الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
میرا نام ڈاکٹر تنویر حسین شاہ تاری ہے اور میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں کارڈیالوجی میں لاسٹ ایئر ٹریننگ کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ دعوت اسلامی کی تربیت کے ذریعے سر نیکی کی دعوت کے سلسلے میں اپنے جو کولیگ ڈاکٹرز ہیں ان کو نیکی کی دعوت دینے کے سلسلے میں جب گئے تو مدنی رسائل تحفے کی شکل میں ان کو دیے، تو اس میں ہمارے کچھ کولیگ تھے ان کو مسواک کی فضیلت کے بارے میں جو مدنی رسالہ تحفے میں دیا، تو انہوں نے اس کو پڑھنے کے بعد اس انداز سے بات کی کہ جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں کہ یہ معاذ اللہ کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، آج کل جدید دور ہے اور ہم نئی نئی ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ اس میں معاذ اللہ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اس کے فضائل بیان کیے گئے. اس طرح کی اگر صورت حال ہو تو اس میں ہمارا کیا جو اس میں رد عمل ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہماری رائے ہونی چاہیے؟
محمد علی رضا تاری، اسلام میڈیکل کالج، ضیاءکوٹ. پاپا، جو آپ نے رسالہ تصنیف فرمایا تھا مسواک کے متعلق، تو جب ہم نے وہ تقسیم کیا تو مختلف لوگوں میں، تو انہوں نے ہمیں آگے سے یہ کوشچن کیا کہ اگر برش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتا تو آپ مسواک نہ فرماتے، چونکہ تب برش ایجاد نہیں ہوا تھا اس لیے آپ نے مسواک کو کا انتخاب کیا. تو اس پر
آپ کی بات ان کی بات میں تھوڑا فرق ہے. ان کے ساتھ جو ہوا ہے نا یہ خطرناک زیادہ ہے، اور آپ کی بھی ظاہر ہے یہ بھی اس نے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا، اس کی معلومات میں کمی ہے. یہ برش کے بارے میں خود سائنسی تحقیق، ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ برش کے اندر تہ میں جراثیم کی ایک تہ جم جاتی ہے، جو کہ مطلب ہے کہ دھونے سے بھی نہیں جاتی، وہ جراثیم اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری مسواک، ہمارے پیارے آقا نے فرما دیا ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم واپس 80 منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہے نا. جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا وہ حق حق حق، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو طرح طرح کی یہ جو مائنس ریسرچ یہ برش کے بارے میں آ رہی ہے، مسواک کے بارے میں کوئی بھی ایسی تحقیق نہیں آئی. آپ کو جنہوں نے کہا یہ مطلب ان کو معلومات کی کمی، یا جس کو میں نے کہا نا ایک تو ہوتا ہے ہوشیار، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اللہ رسول کے احکام کے آگے، ایک اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور جو عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے، کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو ایسوں کی باتوں پر کان بند رکھنے چاہیے، اسی منن والے سوچن والے نہیں. اللہ رسول کی بات آ گئی، ہماری کیا معلومات ہے، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، حیثیت ہو تو بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے، کسی کو ہو ہی نہیں سکتی ہے نا. تو اس لیے مطلب ایسوں کو بھی پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی جائے कि ये देखो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हदीसों से ये साबित है, हमको इसके बारे में जबान बंद रखनी है, ईमान बर्बाद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्लाह ने ब्रश का पता नहीं था, और ये हम नहीं बोल सकते। इल्मे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आशिकों की बातें जो है, ये तफसीर रुहुल बयान एक मशहूर किताब है तफसीर की, सदियों पुरानी किताब है, उसके हवाले से ये है कि एक चिड़िया किसी समुन्दर के किनारे पर बैठी, वो बैठकर उस समुन्दर में से चोंच डाले तो पानी का एक कतरा उसकी चोंच में एक ड्रॉप आया, है ना। तो ये ड्रॉप जो है ना, ये तमाम मखलूकात का इल्म है, और ये समुन्दर ये इल्म मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो चिड़िया के चोंच में पानी आया ना, ये इल्म मुस्तफा के सामने एक कतरा है। इसमें सारे साइंटिस्ट भी आ गए, बल्कि तमाम अंबिया किराम, औलिया किराम, सहाबा किराम, इस सब भी मखलूकात में ये आ गए। इन सब का इल्म जो है, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबले पर नहीं है। नबी मुअज्जम है, इसमें कोई शक नहीं। नबी, हर नबी अपनी उम्मत में सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े आलिम। लेकिन ये सारे अंबिया किराम जो थे, सबके सब उलमा थे। इल्मे मुस्तफा के सामने इल्मे अंबिया जो है ना, वो उसकी नहीं है कोई तरकीब, मुकाबले की बात कर रहा हूँ। तो अब ये साइंसदान बेचते क्या यार, हर दूसरे दिन तो इनकी थियोरी बदलती है। कभी बोलते हैं जमीन घूमती है, कभी बोलते हैं जमीन चपटी है, कभी बोलते हैं साकिन है, कभी बोलते हैं कि नजर की हद आसमान है, जबकि कुरान ने आसमान का तस्किरा किया है और उलमा ने हमको बताया कि जो नजर आता है वो आसमान है, ये नजर की हद नहीं है। आसमान को तो जगह जगह कुरान करीम में तस्किरा है, जैसे लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीनों और आसमानों में वो अल्लाह के लिए। तो अब ये कि आसमान ही नहीं है, कई आसमान है, सात आसमान, जैसे सात आसमान है, सात जमीनें हैं। तो ये बेचारे, इनको मालूमात नहीं है, इनको इनकी जबान में आप ही लोग समझा सकते हैं, हमको तो मौलवी के अगर उड़ा देंगे। हालांकि खैर मैं तो मौलवी क्या मतलब दाढ़ी की हद तक हूँ, वरना आलिम जो होता है ना वो जहीन होता है, मुफ्ती जहीन तरीन होता है। जिस तरह आप में हर फर्द चाहता होगा डॉक्टर्स में कि मैं फुला में भी स्पेशलिस्ट, फुला में भी स्पेशलिस्ट, मेरा ये मेरा वो, मैं बहुत बड़ा सर्जन, लेकिन हर एक में एक नाप होता है ना, किसी में इतनी, किसी में इतनी, किसी में इतनी, किसी में इतनी, तो इतनी होगी तो वो बनेगा स्पेशलिस्ट। बाकी MBBS बनकर वो डिग्री पर इक्तफा करेगा, क्लिनिक खोलेगा गली में, और जो इतनी होगी जिसमें अक्ल, बड़ा हॉस्पिटल खोलेगा। तो तकसीम है ये। तो सब डॉक्टर में जिस तरह मालूमात नहीं होती एक जैसी, तो इसी तरह मतलब ये कि ये जो ये ऐसी बातें करेंगे, या तो देहरिया करेगा, जो देहरिया होते ना खुदा के मुनकिर, ये अक्ल से ही सोचते हैं, और इनके पास अक्ल जैसी कोई चीज नहीं होती। अक्लमंद वही है जिसकी अक्ल में अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना आ गया। इनकी शाने कोई अक्ल नहीं समझ सकती कि कितनी बुलंद है। हमारे पास कौन सी अक्ल है कि हम इनकी शाने बुलंद कर सकें। आला हजरत जैसा आशिक रसूल, जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इतनी शाने बयान की, फिर भी फरमाते हैं ऐ रजा जब साहिबे कुरान है मद्दाफे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यानी अल्लाह तआला जब महबूब की शान बयान करने वाला है, तो तू महबूब की शान का महको कैसे बयान कर सकता है। तो इनकी शान है रब को मालूम, हमारा ईमान है, हम बिन देखे ईमान लाए, ठीक है ना। तो ये अक्ल से बेचारे सोचते हैं, काबिले रहम है, इनको कोई समझाने वाला होना चाहिए। क्या ठीक है अपनी जो भी तालीम है दुनियावी वो अपनी जगह पर, लेकिन इस्लाम के मामले में हमको ये तालीम इस्तेमाल नहीं करनी है। ये मामला उलमा का है, और ये वो इसमें तहकीकात करे, हम ना करें। लेकिन मिसवाक के बारे में किसी भी आलिम दीन का कौल नहीं मिलेगा कि इस पर नऊज़ुबिल्लाह कोई इन्होंने मनफी कलाम किया हो। ये तो ऐसी जो करते हैं ना बातें, ये बच जाते हैं, ये भी मतलब कर्म है इन पर एक तरह से कहीं तौबा कर रहे हैं। वरना बुजुर्गों ने एक वाक्या लिखा है कि पहले भी इस तरह की क्वालिटी के लोग होते थे, इस तरह के जहन के। तो एक नौजवान था, वो बुजुर्गों से अकीदत रखता था, बाप उसका इसी तरह का था। ये सदियों पुराना किस्सा किताबों में लिखा है, जिसको मैं कुछ रिड्यूस करके अर्ज करूंगा। एक दफा ये कोई बुजुर्ग के पास हाजिर हुआ, वो नौजवान एक बुजुर्ग के पास हाजिर हुआ और अब्बू को अपने किस्से सुनाए कि मैं फुला बुजुर्ग के पास गया था। अब्बू मुखालिफ थे बुजुर्गों के, तो बोला क्या दिया तेरे बुजुर्ग ने तुझे? तो उसने निकाल के दिया कि ये मेरे बुजुर्ग ने मुझे मिसवाक का तोहफा दिया है। उसने छीनी मिसवाक और अपने नीचे रख दी और इसके साथ तोहीन की। जैसे ही उसने तोहीन की ना, उसको एक मखसूस तकलीफ शुरू हुई, यहां तक के कुछ अरसे तक वो तकलीफ में तड़पता रहा और उसके बदन से एक अजीबो गरीब जानवर निकला और वो चीखने लगा। तो इसकी बेटी ने देख लिया, उसने डंडा उठाया, उस जानवर को मार डाला, लेकिन वो उसकी तकलीफ खत्म नहीं हुई इसके बाप की, और वो उसमें तड़प तड़प कर शायद दो दिन में या इतने में मर गया। मिसवाक अभी तो इस्तेमाल भी नहीं हुई थी, लेकिन थी मिसवाक, और ये था मिसवाक का, और बस बुजुर्गों का मुखालिफ था। इस बदनसीब ने मिसवाक की तोहीन की। जो जिंदगी में कभी भी मिसवाक ना करे वो गुनाहगार नहीं है, इन मानो कर जितना मतलब ये शख्स जिसने तोहीन की, इसने तो वो बर्बाद हो गया। तो इसलिए मतलब जो इस तरह हमको मतलब हम ये है कि हम बेअमल जरूर हैं, हम बागी नहीं है। हर सुन्नत हमारे सरों पर है, हम अमल नहीं कर पा रहे। अल्लाह तौफीक देगा तो अमल भी करेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे, लेकिन जैसे एक दाढ़ी मुंडाता है तो गुनाहगार, लेकिन जो दाढ़ी की वजह से किसी को बुरा भला कहेगा या दाढ़ी को नऊज़ु बिल्लाह बुरा भला कहेगा, उसका अंजाम कितना खतरनाक होगा। जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, वो अपनी जगह पर है तो गलती पर, लेकिन जो नमाज ही को बुरा भला कहे, उसका अंजाम क्या होगा? तो हमेशा के लिए दोज़ख में रहेगा अगर वो नमाज के फर्ज का इनकार करता है या नमाज की तोहीन करता है। यानी जो नमाज पढ़े इसके बावजूद नमाज की तोहीन करे, वो भी इस्लाम से तो खारिज हो जाएगा। तो इसलिए मतलब ये मामला दीन का बड़ा नाजुक मामला है। तो ये जो भी कह रहे हैं, काश ये मेरी ये गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन जाहिर इनको कैसे पता चलेगा कि मैंने कहा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की रिवायत मौजूद है, मिश्कात शरीफ वगैरह कई हदीस की किताबों में मिल जाएंगी रिवायतें, कि मेरे सीने पर दस्ते अकदस रखा, वो जैसा अल्लाह ताला की शान, वो हाथ हमारे हाथ की तरह नहीं है, और सीने में ठंडक पाई और मैंने अव्वलीन आखिरीन का जान लिया सब इल्म, मेंबर पर मेंबर अकदस पर खड़े हुए और फरमाते रहे, सुबह से शाम तक सिलसिला चलता रहा, पूछो क्या पूछते हो, पूछो क्या पूछते हो, और लोग पूछते रहे और आप मेरे आका इरशाद फरमाते रहे। और इसमें तो यानी कि लोगों पर जो कलम ने लिखा वो भी इल्म है, लोहे महफूज पर इल्म जो है ना, वो जब से दुनिया बनी है और जब से दुनिया फना होगी तब तक का इल्म, और इसके बाद का भी मेरे आका को इल्म है। तो क्या ब्रश ही नहीं था उसमें, ये आपकी मतलब पेस्ट नहीं थी उसमें इल्म में? नऊज़ु बिल्लाह, ना बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी जुर्रत है इल्म मुस्तफा में बात करना, ना ना ना, आंखें बंद बिल्कुल। हमारे महबूब को सब पता है, खुदा की कसम मेरा ईमान है कि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं मेरे मुस्तफा वो भी सुन रहे हैं, और काश मेरे मुस्तफा मुझसे खुश हो, काश खुश हो, मुझे नहीं पता लेकिन काश खुश हो कि मैं गुनाहगार जरूर हूं, लेकिन मेरे को ये बातें जो नहीं, इनसे शदीद नफरत है जो ऐसी बातें करते हैं। मेरे मुस्तफा है तो कुजा मन कुजा, है ना या रसूल अल्लाह, आप कहां हम कहां, हमारी क्या हैसियत ना, हम आपकी शान बयान नहीं कर सकते और तोहीन का तो खैर सोच भी नहीं सकते। सवाल ही नहीं है, इससे पहले हमारी जान निकल जाए, जबान कट जाए, कट जाए, मीठे मुस्तफा के बारे में कोई हमारे जबान से कमजोर बात निकले, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। सल्लु अला अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
बाबूजान मेरा नाम अब्दुल स्तार अत्तारी है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से। तो मेरा सवाल यह है कि बाज़ुकात ऐसा होता है किसी स्टूडेंट के इलाके से कोई पेशेंट आ जाते हैं तो उनके दोस्त का फोन आ जाता है कि मेरा पेशेंट आ रहा है तो इसकी हेल्प कर दीजिएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प ये होती है कि पेशेंट को लेके जाते हैं और सबसे पहले उसे चेक करा देते हैं, मतलब कि एक लाइन लगी हुई है पर्ची का निज़ाम है, वो सबसे हट कर सबसे पहले स्टूडेंट का पेशेंट चेक किया जाता है, डॉक्टर उसे रिस्पेक्ट के तौर पर पहले चेक कर देता है। इसी तरह वो लेबोरेटरी में जाता है तो सबसे पहले उसी का टेस्ट हो जाता है। इसी तरह अगर मेडिसिन लेने जाता है तो सबसे पहले मेडिसिन उसे मिल जाती है। तो फिर स्टूडेंट ये समझता है कि मैंने आज ये अच्छा काम कर दिया, किसी के काम आ गया हूँ। लेकिन दूसरी सिचुएशन सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोगों का इसमें उनकी हक तलफी नहीं हुई, जो पहले लाइन में लगे हुए थे उनसे पहले चेक करा लिया अपना पेशेंट, इसी तरह टेस्ट पहले करा लिया तो कुछ लोगों के टेस्ट रह जाते होंगे, इस हवाले से शरीर रहन में फरमा दें।
एक तो होता है कि बाज बा इख्तियार लोग होते हैं कि जो मतलब है कि इनको इख्तियार हासिल होता है कि वो पहले करवा लें, इसमें बाज़ुकात केस की नौयत होती है कि उसको जल्दी करना होता है, इमरजेंसी जिसको आप लोग बोलते हैं, ये सारे काम रोक कर इमरजेंसी को भुगताया जाता है। लेकिन आप जो कंडीशन बता रहे हैं ओनली सोर्स समझे, वो मरीज इससे ज्यादा जो बेचारे मरज में मुब्तला होते हैं वो लाइन में खड़े होते होंगे और ये सोर्सफुल जो है वो जल्दी निपटा कर चला जाता होगा और वो जो भेजा है बा इख्तियार नहीं है, ये भी होता है। तो ये सूरत जो है ना, ये ज़ारे के दूसरों का तलफ करने वाली सूरत है। हमारे साथ ये कई बार मामला पेश आते हैं एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट पर वो लाइन में लगाए बगैर ले जाते हैं करते हैं, ये तरकीब होती है। हम लोग मतलब उनका बारहा मुकाबला करते हैं, नहीं हम लाइन से जाएंगे। अच्छा, या हम लोग क्या करते हैं, अब तो खैर रास्ता मिल गया कि VIP तरकीब होती है तो हम VIP में चले जाते हैं, तो वहां हमको कभी कोई नहीं रुकता, VIP में एक शोहरत की वजह से तो वो हो जाती है तरकीब। यानी वहां किसी के लाइन की तरकीब आउट नहीं होती, कभी कोई होता भी नहीं है, कभी कोई दो चार होते हैं तो हम लाइन में खड़े हो जाते हैं, हम अपनी बारी से VIP उसमें। हाँ, जो वाकई VIP का जो भी इनका मेयार है उसके मुताबिक इन्हें वो घुस जाएगा तो उस वो कानून तो के खिलाफ उसने किया उसूल के, लेकिन हक तलफी की सूरत तो यहाँ मुश्किल है क्योंकि वहां होते ही बहुत थोड़े लाइन वगैरह कम ही लगती है वहां, और उसमें भी सोर्सफुल लोग भी जाते ही होंगे VIP बनकर। तो ये जब वहां बाकी जो अवामी होता ना, हमने 12 अवामी में किया है, हम नहीं पासपोर्ट भी नहीं देते, हम बोलते हैं हमको इसी में। एक बहुत पुराना वाकया, मैं उम्रे के लिए ठीक लाइन में लगा हुआ था, ये कई साल पुराना वाकया, तो उसके लिए वीजा के लिए तो किसी ने मुझे, कोई एजेंट होगा शायद, उसने पहचान लिया मुझे, उसने कहा अरे आप लाइन में खड़े आइए मैं आपको आगे खड़ा कर देता। मैंने मना किया, मैं अपनी बारी से जाऊंगा, यानी मैं एक तो मदीने जाऊं इतनों की हक तलफियां करके मैं आगे चला जाऊं, मैं यही ठीक हूं, मैं नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि इसमें देख लिया जाए कि क्या पोजिशन है, ले जाने वाला कैसा है। ये तो बहुत देखा जाए तो बाजार माइनर बात है, और बहुत कुछ होता है। बगैर मतलब जरूरत के दवाएं दी जाती है, बेहतरीन दवाएं दी जाती है गैर जरूरी, अगर देना है उसको ये है कि 2 दिन की दवा देनी है उसको 15 दिन की दे देते होंगे, एक तरह की टेबलेट देनी है उसको 10 तरह के कैप्सूल दे देते होंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और जो मतलब है कि उसमें चैरिटी मिलती है दवाएं वो बिक जाती है, सब कुछ हो रहा होता है, मरीज मर रहा होता है, लेकिन उस मरीज को वो इंजेक्शन नहीं देते, पूरी चेन बनी हुई होती है, फोन आते हैं ये नहीं देना है भाई, ये 75,000 का एक इंजेक्शन है, उसको कुत्ते ने काट लिया है, उसको जरूरी है, दम तोड़ रहा है, नहीं देना है, साहब का फोन आ जाता है, उसका फोन आ जाता है। और नीचे वाले जो होते हैं बेचारे, अगरचे हमदर्द होते हैं लेकिन वो अपनी सर्विस की वजह से, ये बड़े अस्पतालों में ये होता है, वो नहीं कर सकते। ये आपको ज्यादा पता होगा कि क्या क्या लोगों को मरने देते हैं, मर जाए कुत्ता मर गया जैसे, हालांकि जो हमदर्द होते हैं बेचारे उन्होंने भेजा इनको गरीबों के लिए, लेकिन नहीं देते, ये सब खा जाते हैं, लेकिन मरना इनको भी पड़ता है। हार्ट स्पेशलिस्ट का हार्ट फेल होता है, न्यूरोसर्जन पागल होके मरता है, इस तरह के केस हो सकता है आपने सुने भी हो, कुछ कुछ मुझे भी याद पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने मतलब कोई ऐसी वो गलत काम किए, ऐसा होता है मतलब। तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए, आज जवानी है, कल उधेड़ उम्र आ गई, अगर जिंदा रह गए तो फिर बुढ़ापे ने आना ही आना, बचकर चाहेंगे कहा, फिर तो दिमाग भी काम करना छोड़ देगा, क्या इलाज करेंगे आप। वो बोलेगा नजला बुखार की दवा देंगे, वो बोलेगा बुखार पेट के दर्द की दवा टिका देंगे, वो तो खिलाफ हो जाएगी मरीज तो आपके। बुढ़ापे में जब बुढ़ापा एकदम उरूज पर आ जाता है ना, तो वो अर्जलिल उम्र जब आ जाती है उसकी, कि उसका दिमाग काम ही नहीं करता, उम्र जो उसकी निकम्मी उम्र तक बंदा पहुंच जाता है। ये अलग बात है कि ओलमा महफूज रहते हैं, ओलमा ओलिया अंबिया, ये मतलब कितनी उम्र हो जाए इनकी अकलें बर्बाद नहीं होती, वरना अवाम उन्नास के साथ आमतौर पर ये होता है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। बस मैं तो यही दर्श देता रहता हूँ कि यार गुर्बत बहुत है, महंगाई बहुत है, आप मेहरबानी करके गरीबों से हमदर्दी करो, इंशाल्लाह आपको गैर से रोजी मिलेगी, सवाब भी मिलेगा। यार ईर्ष आखिर क्यों यार, इतने बेचारे पेट का नहीं होता खाने का, पेट काट के वो कहां से आपको देंगे, देना पड़ता है इनको यार बेचारों को, फिर नतीजन भीख मांगते हैं, लोगों से सवाल करते हैं कि हमको इलाज करवाना, लाखों लाख रुपए मुतालबा होता है डॉक्टरों का, इतने लाख लगेंगे उतने लाख लगेंगे, छूट में वो आदमी बिल्कुल वो फड़क के रह जाता है, यार करें क्या, इतने लाख कहां से लाए, हम गिर भी रह जाएंगे तो भी हमको कौन देगा इतने लाख रुपए, और बच्चा फूल जैसा जो तड़प तड़प के मर जाता है। तो ऐसा है कि आप लोग अपना कुछ बजट बनाए, प्राइवेट बजट, पर्सनल किसी को क्यों कहें, अल्लाह के लिए करें, अल्लाह जाने आप जाने, प्राइवेट बजट हो गए मैंने इतने हजार का या इतने सौ का, ये महाना गरीबों पर इस्तेमाल करना है, सैयदों पर इस्तेमाल करना है, आप देखो इंशाल्लाह आपको बरकत ना हो तो मुझे बोलना, अल्लाह खैर से बरकत देगा, दुनिया की बरकत में अगर कोई इजहार नहीं भी हुआ आखिरत की बरकत कहीं नहीं जाएगी, रब राजी होगा बेड़ा पार होगा ना, गरीबों को यूं अपने तड़पाते रहेंगे, रब नाराज हुआ तो हमारा क्या होगा, जबकि कोई नाजायज सूरत तक हम पहुंच गए तड़पाने में। अल्लाह ताला हमको हमदर्दी भरा दिल अता फरमाए, आज हम मरीज हैं, कल हमारा बाप मरीज, हमारी माँ मरीज, हम खुद मरीज, डॉक्टर बीमार नहीं होते ऐसा तो नहीं है, अल्लाह ताला से आफियत का सवाल है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मोहम्मद नवाज कंडियारो से, डेंटिस्ट हूँ मैं, डेंटल टेक्नीशियन हूँ, डेंटल टेक्नीशियन पैरामेडिक्स में। हमारे यहाँ जो है लेडीज पेशेंट ज्यादा आते हैं दांत निकलाने के लिए, अमीर अहले सुन्नत से इल्तिजा है कि हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि हमारे जो यूनिट्स होते हैं वो काम के नहीं होते हैं, हमारे इलाके में, यहाँ तो कराची में तो काम के होंगे लेकिन हमारे यूनिट जो है वहाँ काम नहीं करते हैं। जब हम टीका लगाते हैं या पेशेंट चेयर पे बैठता है तो डर की वजह से बेहोश हो जाता है या टीके की वजह से बेहोश हो जाता है, तो उसको सीधा लेटाना पड़ता है, अभी जो हमारा चेयर है वो काम नहीं करता है, तो हम क्या करें, लेडीज पेशेंट को कैसे हाथ लगाएं, उनके साथ कोई होता भी नहीं होता है, हम उसको लेटाना होता है जल्दी जल्दी में जैसे उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, मेरे अहले सुन्नत से
ब्लड प्रेशर सही हो जाए,
हाँ क्योंकि वो बैठने से बेहोश हो जाती है, ये ब्लड प्रेशर लो हो जाता है
इंजेक्शन से
जब ऐसा कुछ डर की वजह से भी,
हर केस में तो ऐसा नहीं होता होगा,
तकरीबन दिन में एक दो ऐसा होता ही होता है, क्योंकि डर की वजह से भी होता है, अगर टीका न भी लगाए चेयर पे बैठने से ही चला गया,
चेयर में ऐसी कोई करंट वगैरह रखा गया,
वो डर की वजह से सर,
खौफ से इसमें आपका कसूर,
दांत निकला ना, क्या है कि हम अभी उसको क्या करें,
नहीं तो चेयर पे अगर वो बेहोश हो गया पेशेंट, आपका कसूर,
हमारा कसूर अभी ये है कि हम इसको लेटाना चाहते हैं कि सीधा लेट जाए तो इसके जो पांव ऊपर हो जाए और इसका सर नीचे हो जाए तो उसका ब्लड प्रेशर लेवल में आ जाएगा, जल्दी में ठीक हो जाएगा, अभी हमारी चेयर जो है ना उसमें होता है कि उसको लेटाने की गुंजाइश होती है, लेकिन हमारे यूनिट काम नहीं करते क्योंकि खराब हो जाते हैं, साल साल गुजर जाते हैं, हम लिख लिख थक जाते हैं, तो हम क्या करें, रहनुमाई फरमाई,
मदीना करें। अव्वल तो है मरीज को चाहिए कि मरीजा को चाहिए कि वो जब तक लेडीज से काम चले, लेडी डॉक्टर से, मुसलमान लेडी डॉक्टर से जब तक काम चले, वो जेंट्स के पास ना जाए, अब अगर उसको नहीं मिलता डॉक्टर, या वो डॉक्टर लेडी डॉक्टर तो अवेलेबल है, उसके मरज का इलाज नहीं कर पा रहा, तो इस सूरत में वो जेंट्स के पास जा सकता है। लेकिन जेंट्स पर यह वाजिब नहीं है कि वो चेक करेगा कि लेडी डॉक्टर मिली कि नहीं मिली। ठीक, उसके पास वो मरीज आया, अब या मरीज आई, वो उसका इलाज तो कर सकता है, जितना जरूरत है उतना वो हिस्सा खोल सकता है, उसको छू भी सकता है, जरूरत से ज्यादा नहीं। ठीक है ना, तो अब उसको लिटाना, पांव उठाना, जिस चीज की इसको जरूरत है, इसकी डॉक्टरी में इसको पता है कि इसकी जरूरत है, तो यहाँ ये मुजरिम नहीं है। इसमें ये भी है डॉक्टर के लिए कि डॉक्टर को रियायत तो मिल गई, लेकिन डॉक्टर को अगर वो शहवत पैदा होती है तब तो इसके लिए नाजायज हो जाएगा, क्योंकि इस पर इसका इलाज करना फर्ज तो नहीं है, ये मना कर देगा मैं नहीं करूंगा।
इससे रिलेटेड आंसर है मेरे पास, जवाब है इसका, वो ये है कि अगर इनका यूनिट ठीक नहीं है डेंटल यूनिट, तो उसका सलूशन ये है कि जमीन में लिटा दें, वो सेम उसका इफेक्ट पड़ता है जो भी पड़ता है। क्योंकि हमारा मकसद ये होता है, जिस पोजीशन पे मरीज होता है उसमें होता यह है कि खून का भाव जो होता है वो बाकी जिस्म की तरफ हो जाता है, वो दिमाग को नहीं मिलता तो दिमाग सुन्न हो जाता है, जो कि आम लफ्जों में कहा जाता है, उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है।
डेंटिस्ट वालों की जो कुर्सी है ना, जो गांव गोठ वाली कोई आई होगी जिसने जिंदगी में कभी ऐसी कुर्सी देखी नहीं है, तो वाकई वो इसका एक वो ना ऊपर से लाइटें और जो इसका जो हिसाब किताब जो सर पर आती है एकदम, तो वो उसका वो टेंशन तो हो ही जाता होगा।
नहीं, ये सही बात है, ऐसा ही होता होगा। मेरे को अपना याद आ गया चुटकुला, एक बहुत पुरानी बात है, था एक लीडर मगर था प्योर सिंधी, सिंधी मानू था, वो मेरे साथ था, किसी भी सबब से मेरे साथ था। तो हम लोग लिफ्ट में सवार हुए, लिफ्ट उसके लिए जिंदगी का पहला मौका था, लिफ्ट में वही गांव का था, सिंध के कहीं या किसी बहुत छोटे मोटे शहर का था, लिफ्ट उसने ना देखी थी ना उसमें बैठा था। अब माने नहीं माने, वो जैसे लिफ्ट ऊपर को उठी ना, हे अदा फेर चढ़िया यू हाथ फैला दिया उसने, अदा माने भाई, भाई मुझे चक्कर चढ़े, बेसाख्ता वो बोल पड़ा। तो ये होता वो चेयर को ऐसी वाकई चुकी होती होगी, वो बेचारी घबरा जाती होगी कि अब ये यहां से दबोचती है कहां से दबोचती है मुझे। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
हमें जो ब्लड लेना पड़ता है या किनोला पास करना पड़ता है तो हमें बांधना पड़ता है बाजू, न्यू बॉर्न बच्चे का अगर हम बेदर्दी के साथ बांधना पड़ता है, अगर ना बांधे तो उसकी नस ऊपर नहीं आती और किनोला सही पास नहीं होता, और उसका ब्लड अगर लेना होता है तो ब्लड भी सही नहीं लिया जाता। तो दो दिन पहले की बात है कि मैंने एक न्यू बॉर्न बच्चे को बेदर्दी से बांधा क्योंकि उसका ब्लड नहीं आ रहा था, और उसके बाद मेरे अंगूठे में दर्द शुरू हो गया और अभी भी दर्द हो रहा। तो ये इसमें क्या
आपका यूरिक एसिड चेक करवा ले, जोड़ में दर्द हो गया था।
मुझे ये लगता है कि
नहीं, जब बेदर्दी ये जो सर्जन छुरियां चलाता है इससे बड़ा बेदर्द कौन होगा यार, जो दर्द मिटाने के लिए तो बेदर्दी कर रहा है, तो आप भी उसके मरज को मिटाने के लिए ही तो बेदर्दी की ना, तो इसको बेदर्दी के अल्फाज से ताबीर भी नहीं करेंगे। आपने जुल्म नहीं किया, दुश्मनी नहीं की, आपने उसका अच्छा ही तो चाहा, और आप हैं भी अगर क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो कानून भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की तो क्या आप दुश्मनी है या वो दुश्मन का बच्चा है तो इसको मसल दिया तो फिर तो आखिरत में जाहिर है कि जवाब दे होंगे, वो दुनिया में भी पकड़े गए तो जवाब दे। आप ऐसा करें, तीन बार या मुगनीजू या मुगनीजू या मुगनीजू या मुगनीजू पढ़ के दम कर दे, और या गनीजो या गनीजो का वृत करते रहे, अल्लाह करेगा बेहतरी आ जाएगी।
मेरा सवाल यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में रश वगैरह होता है, तो जो मरीज के साथ आए हुए थे वालिद साहब या भाई वगैरह, तो वो खुद से ना 150 रुपए कभी मतलब दे देते वार्ड बॉय या स्ट्रेचर मैन को या जो एक्सरे में काम करते ना, तो वो लेना कैसा है, या कोई मतलब जो ना चाय पिला देता खुद ही अपनी मर्जी से, तो इसके बारे में
इससे आगे पीछे क्या हुआ होता है, जब ये 150 दे रहे हैं आगे पीछे हुआ क्या है,
वो अपनी खुशी से दे रहा है
या नहीं? वो तो शराब भी खुशी से ही बंदा पीता है और बहुत सारे काम खुशी से ही होते हैं। आगे पीछे क्या मतलब इसके कहानी क्या है?
कुछ नहीं, बस
भाई इनको नहीं देते, मुझे नहीं देते, आप में क्या मतलब सुरखा पे के पर
लगे जहन में ये होता है कि ये हमारा काम आइंदा या जल्दी करा देगा या इस वक्त जल्दी
फैसला कर ले क्यों दे रहे आप खुद फैसला कर ले ये क्यों कर रहे हैं आइंदा ये काम देगा रिश्वत नहीं तो क्या है ना ले भाई पानी भी इनके हाथ से नहीं लिया करें हम ये मतलब पानी तो मैंने मुबालगा किया हाँ पानी की बोतल उसकी तो कीमत है मिनरल वाटर जनरली पानी का गिलास भर के पिला दिया तो ये तो माल में नहीं आएगा कि ये यूं हमारे बिकता नहीं है मिनरल वाटर बिकती है और बोतल एक ये मुबालगा करके ना इनकी चाय पीनी है ना इनका पानी पीना है क्योंकि आप कुछ भी इनका ये लेंगे ना आप गुरुवत में फंसेंगे वो जो इन्होंने पूछा था ना बताया था वो लाइन में आगे खड़ा करना पीछे करना वो सब करना पड़ेगा अब आप नहीं कर रहे उसका नोट कर रहा है ये रिश्वत से बचना होगा यानी जितना लिया है वापस देना होगा जिस चीज से लिया है और अगर वो ना रहे या पता ही नहीं है कहाँ है अगर ना रहे वारिस रहे पता है कि फुला फुला के लिया था अब वो मर गए वारिस बाकी है तो वारिस को देना होगा अब अगर कुछ पता नहीं जितनी रकम इसका किससे लिया क्या है तो शरीफ फकीर को देना होगा और तोबा भी करनी है हर सूरत में तो इससे खलासी होगी खाली तोबा काफी नहीं होती ये रिश्वत के लिए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अच्छा मेरा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है मतलब कि नाम का ना आदमी की जिंदगी पे इफेक्ट होता है ठीक है अगर एक आदमी का नाम ये एक लड़की का नाम अहमद या आयशा है तो उसका नाम चेंज करके हालांकि अहमद और आयशा तो बहुत बरकत नाम है
अहमद
अहमद रजा या इस तरह
अहमद रजा मरहबा
और या आयशा नाम है तो वो चेंज करके कहते हैं जी इसका इसकी जिंदगी पे ना कोई इफेक्ट नहीं मतलब सही
भारी है लेकिन नाम भारी है बोलते
जी तो वो कह रहे किसी पीर साहब ने कहा है जी ये आप चेंज कर दें तो उसकी जगह पे कोई और डाल देते हैं तो मेरा तो अपना पर्सनल ये है कि ना अहमद तो नाम इतना अच्छा है मतलब अहमद रजा
कुर्बान
जी तो वो आप इसके बारे में क्या कहेंगे नाम चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए
जो आप कह रहे मेरे को भी चेंज करना समझ में नहीं आता
नहीं करना चाहिए
समझ में नहीं आता इस वजह से करना कि ये नाम भारी है
जी
ये समझ में नहीं आता भारी से मुराद बंदा तकलीफ में इस नाम की वजह से मेरे को समझ में नहीं आता सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद
सर सब्ज़ इस गुलज़ार